कुंज बिहारी जय गोपी जन जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा बन चाहरी यमुना हरी यमुना ते जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जन बल्लभ गिरिवर जय राधा माधव राधा माधव राधे जय प्रभुपा जय जय प्रभु ओम नमो भगवते वासे भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 7 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 19। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य च गदमुदनवन्ति मज्जतौ मज्जतो नौ नार्तस्य च गदमुदनवन्ति मज्जतो नौ तप्तस्य तत् प्रतिविदिर्य इहाञ्जसेष्ट तप्तस्य तत् प्रतिविदिर्य इहाञ्जसेष्ट तावत् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितान् तावत् विधो तनुव्रतां तदुपेक्षितान् बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य च गदमुदनवन्ति मज्जतो नौ तप्तस्य तत् प्रतिविधीर्य यहाज्य श्रेष्ठ तावत् विधो तावत् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितान् तावत् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितान्
आप लोग दोहराएंगे माताएं बोलेंगी माता एक माता बोलेंगी
शरण पितर
माताएं बोलेंगी
बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह
शब्दार्थ शब्दार्थ बोलेंगे अभी बालस्य छोटे बालक की नहीं यह इस संसार में शरणम शरण सुरक्षा पितरौ पिता तथा माता नरसिंह ए नरसिंह देव न तो आर्तस्य किसी रोगी से पीड़ित व्यक्ति का च भी अगदम दवा उदनवंती सागर के जल में मज्जत डूबते व्यक्ति की नौ नाभ तप्तस्य भौतिक दुख से पीड़ित व्यक्ति का तत् प्रतिविधि जगत के दुखों को रोकने हेतु खोजी गई समन विधि यह जो यह इस भौतिक संसार में अंजसा अत्यंत सरलता से इष्ट स्वीकृत दवा के रूप में तावत उसी प्रकार विभो हे स्वामी तनुभ्रतां भौतिक शरीर स्वीकार करने वाले जीवों का त्वत उपेक्षितानां आपके द्वारा उपेक्षित तथा अस्वीकृत अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है हे भगवान नरसिंह देव हे परम पुरुष देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण हेतु कुछ भी नहीं कर पाते वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उससे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरण था माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। तात्पर्य माता पिता की देखरेख में विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल स्थल और सुरक्षा में वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है किंतु इनमें से किसी एक के द्वारा सुरक्षा होनी निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही उससे क्षणिक लाभ मिल पाए किंतु उससे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए भी संतान को आकस्मिक मृत्यु रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया जा सकता है। कोई भी यहाँ तक के माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंततो गत्वा श्री भगवान की शरण बनते हैं और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उनकी रक्षा हो जाती है। यह निश्चित है जैसा कि भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कौनते है प्रतिजानी ही नवे भक्त्या प्रणश्यति हे कुंती पुत्र तुम निर्वय होकर यह घोषित कर दो कि मेरा वक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता। अतएव जब तक कोई श्री भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा रक्षित न हो तब तक कोई उपचार सफलता पूर्व काम नहीं करता। फलस्वरूप मनुष्य को श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित है उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के प्रहारों का सामना करने का प्रयास कर रहा है, किंतु अंततोगत्वा वह सभी प्रकार के भौतिक प्रकृति के अधीन हो जाता है। यद्यपि तथा कथित दार्शनिक तथा वैज्ञानिक भी भौतिक प्रकृति के प्रहारों पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 13:9 में कहते हैं कि संसार भौतिक संसार के वास्तविक दुख चार हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अर्थात जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग। विश्व के इतिहास में कभी कोई भौतिक प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सकता। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उनके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता। अतएव तथाकथ वैज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जनता को सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने हेतु मजबूती से प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावना अमृत के स्तर तक श्रेष्ठ बनाना चाहिए। हमारे द्वारा विश्वभर में कृष्ण भावना अमृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वद उपेक्षिता नाम, यद हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहें तो न तो हम इस संसार इस भौतिक जगत में न उच्च लोक में न अधोलोक में कहीं सुखी कभी सुखी बन सकेंगे, न ही अधोलोक में कभी सुखी बन सकेंगे, मतलब कभी सुखी नहीं हो सकते। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकय चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, ब्रश्यवान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भूतैर्महद्वीयः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुष्य पुरुष, भुङ्क्ते गुणानसोडसोडसात्मकं सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् बचांसि मे, सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् बचांसि मे। थोड़ा इसका बेस खोलो, थोड़ा सा इसका बेस खोलो, एक थोड़ा सा तो यहां पर भगवान नरसिंह देव का प्रसंग चल रहा है, किस प्रकार भगवान अपने भक्त के वशीभूत होते हैं। सत्यम विधातु निज वृत्य भाषितम, निज वृत्य भाषितम तो सत्यम विधातु, उनके भक्त ने उनके दास ने उनके सेवक ने बोल दिया था कि मेरा भगवान सर्वत्र है, और हे हिरण्यकश्यप तुम पूछते हो कि इस खंभे में है तो इस खंभे में भी है। तो इस बात को सत्य करने के लिए भगवान और खंभे से प्रकट होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान जब प्रसन्न प्रकट हो गए तो अभी जो है चूंकि उनको बहुत क्रोध था, क्रोध किस बात का था, क्रोध इस बात का था कि एक 5 बरस के बच्चे के ऊपर हिरण्यकश्यप ने जो अत्याचार किए थे उसकी कोई सीमा नहीं, लिमिट नहीं, इतना अत्याचार के हो सकता है कि भविष्य में इतने अत्याचार किसी के ऊपर नहीं किए गए हों। तो इसलिए भगवान इतना क्रुद्ध थे कि उसके शरीर को उधेड़ करके रख दिए। कभी होता है ना, कभी कभी ज्यादा क्रोधित होते हैं तो पूरा उसको मरे मराए में भी फिर पीटते ही रहते हैं। तो इसलिए थैंक यू। तो इसलिए भगवान जो है बहुत क्रोध थे और हिरण्यकश्यप का वध कर भी दिए लेकिन उनका क्रोध समन नहीं हुआ। तो जब हिरण्यकश्यप के कुछ सैनिक दौड़ करके आए अपने स्वामी का बदला लेने के लिए तो भगवान ने भी असंख्य हाथ पैदा कर दिए और अपने नाखूनों से उन सबको उधेड़ दिया। जैसे धनुकीधर रुई को उधेड़ता है ऐसे उन्होंने सबको फेंक दिया उधेड़ करके, और फिर भी उनका गुस्सा समन नहीं हुआ। इतना गुस्सा है कि जो है कुछ कह नहीं रहे। जब शेर जब गुस्सा करता आप देखते हैं उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे भगवान की आंखें लाल हैं। और उससे क्या हुआ, क्योंकि ये रात्रि का समय था, संध्या के समय हुआ था, तो हिरण्यकश्यप को तो मार दिए सूर्य छपते समय, तो लेकिन अभी थोड़ी कोई बाकी लीला के लिए सुबह का इंतजार किए हैं, वो अभी भी रात्रि के समय भी चल रही है। तो भगवान की आंखों से जो तेज निकल रहा था उस तेज के कारण जो चंद्रमा तारे हैं जो टिमटिमा रहे थे उनका सबका तेज फीका पड़ गया, और भगवान की गर्दन के जो बाल थे जब हिलाते थे भगवान गुस्सा में कभी कभी तो उससे जो बादल थे वो छितर बितर हो जाते थे। यहां तक कि जो देवता लोग बादलों की ओट में छुप करके देख रहे थे इस लीला को। तो वो हुआ ये हुआ था कि जैसे ही भगवान के बाल हुए, बाल मतलब हिले, तो उस समय उनके विमान भी जो है इधर उधर चले गए, कोई ऊपर के लोकों में चला गया तो कोई नीचे के लोकों में चले गए, केवल बालों की टकराहट से। आप सोच सकते हैं कितना उनका जो विकट रूप होगा। और भगवान जो है सांस ले रहे थे, गर्म गर्म जो सांस ले रहे थे उसका प्रभाव यह हुआ कि समुद्रों में सुनामी आ गई, भयानक गर्जना करने लग गए समुद्र, और उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई। और भगवान जब चलते थे तो पृथ्वी जो है जंप करती थी, उसकी जंप से जो जो क्या नाम है पहाड़ थे वो सब बॉल की तरह उलक रहे थे, ऐसे विचित्र दृश्य था। और भगवान ने क्या किया, तो भगवान ने उसके छाती को फाड़ करके उसकी अंतड़ियों को निकाल लिया, और अंतड़ियों को निकाल करके गले में डाला, और उसके हृदय को फाड़ दिया और उसके हृदय को निकाल लिया। तो हृदय को क्यों निकाल लिए भगवान, हाथों को ही निकाल करके संतुष्ट क्यों नहीं हुए? तो हृदय को इसलिए ठाकुर जी निकाल लिए क्योंकि उन्होंने देखा वास्तव में ये हृदय तो मेरे भक्त का था, जय विजय का था, जय का था, ये तो नरसिंह नहीं है। तो इसलिए मानो भगवान उस हृदय को निकाल करके देखना चाहते थे कि वास्तव में ये मेरे भक्त जय विजय का ही है या किसी दूसरे का है। तो इसलिए भगवान ने उसके हृदय को बाहर निकाल लिया और जाकर के कहां बैठ गए ठाकुर जी, सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। सिंहासन पर क्यों बैठे, तो सिंहासन पर इसलिए भगवान बैठ गए क्योंकि वो देखना चाहते थे कि मेरा जो भक्त था जय जब हिरण्यकश्यप के रूप में आया वो इतना शक्तिशाली था, इतना ऐश्वर्यवान था कि तीनों लोकों में कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए भगवान जो है उसके थोड़ा ऐश्वर्य को देखने के लिए वो कितना ऐश्वर्यशाली है, उसकी जो है क्या नाम जो गद्दी जिस पर हिरण्यकश्यप बैठ करके शासन करता था, सबको ऑर्डर करता था, जिसके शासन में जो है देवता लाइन लगा करके खड़े रहते थे, तो भगवान आश्चर्यचकित थे और उसको जो है थोड़ा सा सिंहासन पर बैठ करके देखना चाहते थे ये कैसा है, थोड़ा सा उसको जो है देखना रहे देख रहे हैं। और कुछ आचार्यों को ऐसा मांगना है कि भगवान क्योंकि उस सिंहासन पर प्रहलाद महाराज को स्थापित करना चाह रहे हैं जो उनका भक्त है, इसलिए भगवान जो है थोड़ा बैठ करके ये देख लेना चाहते हैं कि शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कोई जो है क्या नाम है हिरण्यकश्यप का कुछ आत्मा तो नहीं रह गई इसके अंदर जिससे मेरे प्रहलाद को जो है फिर से कष्ट करे कष्ट में डाले, इसलिए भगवान बैठ करके उसको पूरा शुद्ध कर देना चाहते हैं। और इस प्रकार भगवान वहां बैठे, जब बैठ गए तो सारे देवता लोग एक एक करके आए और उनकी स्तुति की, तो भगवान की स्तुति करने पर भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। देवता जो है मतलब संतुष्ट होना तो दूर था, देवता लोग जब स्तुति कर रहे हैं भगवान की तो कोसों दूरों से जो हाथ जोड़ रहे हैं वहीं से हाथ जोड़ रहे हैं, हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए। अब सोच सकते हैं कि भगवान कितने क्रोध में हैं कि देवताओं की भी हिम्मत उनके पास में नहीं पड़ रही है। स्वयं ब्रह्मा जो है भगवान के पुत्र हैं, स्वयंभू स्वयं भगवान जो है उनको पैदा किए थे, वो उनके पुत्र हैं और पुत्र को कभी भी अपने पिता से भय नहीं रहता, लेकिन आज वही ब्रह्मा जी अपने पिता के पास में जाने से थर थर कांप रहे हैं, इसलिए उन्होंने दूर से ही प्रणाम कर लिया, भगवान वहीं से प्रसन्न हो जाओ। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए और देवताओं ने अलग अलग देवताओं ने प्रार्थना की है, 17 श्लोकों में देवताओं की जो है प्रार्थना है। इसके बाद में जो है हुआ ये था कि जब ये सारे के सारे जो है प्रार्थना करके चले गए, तब जो है ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, और यदि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो उसका परिणाम फिर भयानक होगा, और भयानक क्या होगा, प्रलय हो जाएगी। इसलिए इनको किसी प्रकार से क्या करना चाहिए, उनको जो है प्रसन्न करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने फिर लक्ष्मी जी को संबोधित किया कि हे माते, ये आपके पति हैं और पति की चाबी पत्नी के पास होती है, उसको कैसे ट्रीट करना है। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाओ और थोड़ा सा आप जा करके उनको प्रश्न करो। तो लक्ष्मी जो है वहां जाती हैं और जाकर के जैसे ही उन्होंने नरसिंह भगवान के मुख को देखा, अदृष्ट और अश्रुत पूर्वत्वात्, लक्ष्मी जी ने देखा कि वास्तव में अदृष्ट, आज तक मैंने जो है ऐसा रूप कभी नहीं देखा, और अश्रुत्वात्, ना ही मैंने कभी किसी के मुख से सुना कि भगवान मेरे स्वामी ऐसा भी रूप धारण करते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी क्या की, तुरंत उस रूप को देखी और देख करके तुरंत वहां से भाग करके आई और उनसे कहा कि ये मेरे पति नहीं है, ये मैंने कभी नहीं देखा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो आचार्य ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी जी गई थी बड़ी सज देकर, अरे मैं अभी जो है प्रश्न कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं देवता हो। और जैसे ही लक्ष्मी गई तो भगवान ने जो दहाड़ मारी, लक्ष्मी जो है उछट कर करके दूर पड़ी और अपने लहंगा को उठा करके और फिर वहां से भागे। इतनी लक्ष्मी डर गई कि कोसों दूर भाग गई भगवान से। तो जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्या किया जाए। तब फिर उन्होंने प्रहलाद की तरफ देखा और प्रहलाद की तरफ देख करके जो है भगवान ने प्रहलाद से कहा कि हे पुत्र, भगवान ने तुम्हारे कष्ट के निवारण हेतु ही ये जो है इतना भयानक रूप धारण किया है, इसलिए पुत्र प्रहलाद तुम जाओ और जा करके जो है भगवान को प्रसन्न करो। तो यहां पर जो है नारद जी बोलते हैं कि महाभागवतो अरवक उपेत्य भूविकायेन मनसा विद्रत्वांजलि। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो प्रहलाद महाराज जाते हैं और उसका उपमा दे रहे हैं, क्या नाम है, नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि महाभागवतो, प्रहलाद क्या है, महाभागवत है, ये देवता भी उनके सामने कोई नहीं। यदि महाभागवत नहीं होते तो एक महाजन कैसे बन जाते भाई वो, तो इसलिए महाभागवतो अरवक, मात्र 5 साल के बच्चे हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन उपेत्र भुव कायन विनम्र विद्युतांजलि, बिना किसी भय के, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पास में जाता है, ऐसे ही जो है प्रहलाद महाराज इस प्रकार गए कि जहां ब्रह्मा आदि देवता उनके निकट नहीं आ रहे हैं, लक्ष्मी तक दूर से देख करके भाग गई, और वो प्रहलाद ऐसे उनके पास में गए जैसे उनको बिल्कुल कोई भय नहीं था, और पास में जाकर के भुवि कायेन निनामह, साष्टांग भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया, और विद्युतांजलि, और हाथ जोड़ करके वही जो है प्रहलाद क्या किए, उनके चरणों में पड़ गए। जब इस प्रकार भगवान नरसिंह देव ने अपने चरणों में एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा इस प्रकार पड़ा हुआ देखा, तो उनका हृदय उमड़ पड़ा है? और बोलते हैं, स्वपाद मूले पतितं तम अर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तत्सीन उददात करांबुजं कालहित्रस्तत्य दियां कृत उभयम् अभयम्। स्वपाद मूले पतितं तम अर्वकम्, तम अर्वकम् स्वपाद मूले पतितं, उस छोटे से बच्चे को प्रहलाद को जब अपने चरणों के पास में पड़ा हुआ जब उन्होंने देखा, तो विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, विलोक्य देव भगवान नरसिंह देव उस बच्चे को देख करके परिप्लुतः, कृपया परिप्लुतः, मतलब कृपया का मतलब करुणा से, करुणा से प्रप्लुत, मतलब इतना भगवान के हृदय में करुणा जागृत हो गई, उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई नरसिंह भगवान से, उस बच्चे को देख करके कहां अग्नि निकल रही थी उनके आंखों से जो है, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रहलाद को देखा है, और इतने वो जो है उनका जो टेम्परेचर एकदम हाई उसमें था है, वो सीधा जो है प्रहलाद को देख करके माइनस में चला गया, इतने भगवान जो है प्रसन्न हो गए, आंखों से आंसू निकल पड़े, और उन्होंने उत्थाय क्या किए, उत्थाय मतलब उस बच्चे को उठा लिए भगवान, जैसे कोई बच्चा जब रोता है माँ के पास में जाता है तो माँ क्या करती है, बच्चे को उठा लेती है, छाती से लगा लेती है, ऐसे ही भगवान ने प्रहलाद को उठाया, अपनी जंगाओं पर बिठा दिया, और तत्शीष्ण उदधात करांबुजम, तत्शीष्ण उद्धात करांबुजम, करा अंबुजम, कर अंबुजम, तत्शीष्ण उद्धात, भगवान ने क्या किया, जो अपना कर कमल सदृश जो हाथ था प्रहलाद के जो है सर पर रख दिया, भगवान का हाथ, जिनकी चरण रज के लिए है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तनवंत दिव्य स्तवय वेदे सांग पद क्रमोपनिषदि गायंती यम सामगा ध्यानावस्य तद्गतेन मनसा पश्यन्ति एव योगिनो यश्यन्तान विदु सुरासुरगणाय, यस अंत न विदु, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि उनके एक चरण रज के लिए तरसते रहते हैं, आज भगवान ने चरण की तो छोड़ो, अपना बरद हस्त जो है प्रहलाद के अपने हाथों सर पर रख दिया है। जो बरद हस्त की उपमा देते हैं, काल ही त्रस्तस्त धियाम कृत अभयम, ओ बरद हस्त जिससे काल भी डरता है, काल भी क्या होता है, वो भी जो है थर थर कांपता रहता है, तो काल ही त्रस्तस्त धियाम कृत अभयम, जो हाथ धियाम, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनका शरीर भगवान की सेवा में लगे हुए, भजन में लगे हुए हैं, वो हाथ ऐसे भक्तों को क्या करता है, अभयम, अभय देता है, सारे भयों से मुक्त करता है, उस अभय प्रदान करने वाले हाथ को जो है भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज के सर पर रख दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब क्या परिणाम हुआ, जैसे ही सर हाथ पर रखा तो उसका फिर क्या हुआ परिणाम, तो करांबुज अदधात शीष्ण, जैसे ही जो है भगवान ने अपना हाथ प्रहलाद के सर पर रखा, तो उसके जो सारे अशुभ थे, जो थोड़े बहुत जो है कुछ कर्म बीज के रूप में जो रह गए थे वो भी सारे जल करके जो है खत्म हो गए, और शीघ्र ही उनको जो है भगवत ज्ञान प्रकट हो गया। और क्या हुआ, और उस ज्ञान प्रकट हुआ साक्षात भगवत साक्षात, उस ज्ञान का साक्षात्कार भी उनको हुआ, और आनंद में मगन हो गए। रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, सात्विक विकार उनके शरीर में पैदा हो गए, और इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने आंखों को अपने जो है क्या नाम है नेत्रों को और अपने हृदय को भगवान में लगा करके, भगवान के शरीर पर लगा करके, और फिर हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सबसे बड़ी स्तुति है श्रीमद् भागवतम में, 8 श्लोक से लेकर के 50 श्लोक तक उन्होंने क्या किया है, प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति की है। अर्थात 42 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति है। तो इसका जो है कुछ हम जो है बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे। तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज वास्तव में जो कृपा नरसिंह भगवान की प्रकट हुई है उसको याद कर रहे हैं, और याद करके जो है अपने को कैसा समझ रहे हैं, वास्तव में बहुत तुच्छ समझ रहे हैं। इस कृपा का वास्तव में अधिकारी नहीं था जो भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। और दूसरी बात उनको जो है ये भी पिंच कर रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम जाकर के प्रसन्न करो, तो वो सोच रहे हैं कि भाई मैं प्रसन्न करूं, अरे ब्रह्मा जैसे, शिव जी जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, इंद्र, चंद्र, वरुण, सिद्ध, चारुण, गंधर्व, अप्सरा, कितने कितने सारे नाग, सभी ने प्रार्थना किया, उससे प्रश्न नहीं हुए, तो भला मेरे जैसे व्यक्ति से ठाकुर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने को जो है विनम्र भाव से जो है वो अपने को अनधिकारी प्रस्तुत करते हुए बोलते हैं ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा किम तोष्टुम अरहति तस्मै हरि उग्र जाते समय हरि उग्र जाते। अर्थात ब्रह्मा आदय सुरगणा, ब्रह्मा आदि, तो आदि का मतलब और भी बहुत सारे देव देवता आए थे, उन्होंने क्या किया था, आपकी जो है बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में जो है स्तुतियां की थी। एक तो उनका कुल भी उच्चा है देवताओं का, दूसरा जो है वो जो है वैसे भी सतोगुण में रहते हैं देवता जो है, क्या नाम है, मन से देवताओं का सतोगुण से जो है देवताओं की उत्पत्ति हुई है, तो सत्वार्थ संज्ञायते ज्ञानम, ज्ञान तो सतोगुण में ही होता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इतने जो है उच्च कुलीन जो हमेशा सतोगुण में रहते हैं वो देवता जो है स्तुति करके फिर भी नरसिंह भगवान को प्रसन्न नहीं कर सके, तो किम तोष्टुम अर्हति समय हरि उग्र जाते, लेकिन भला मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, क्यों उग्र जाते, मेरी जाति क्या है, उग्र जाति है, असुर जाति में मैं पैदा हूं, जो शुरू से ही बचपन से मार काट धाड़ गाली ग्लोज, मतलब क्या नहीं करते देखा है वो सब मैं करता रहा, मेरी क्या जाति है जिसके कारण मैं जो है उनको प्रश्न कर सकता हूं। तो इस प्रकार जो है प्रहलाद महाराज सर्वप्रथम अपने को अनधिकारी समझते हैं। आगे के 2 श्लोकों में फिर उनको कुछ ढाढ़स बनता है, क्योंकि जानते हैं उन्होंने सुना भी है कि भगवान कैसे हैं, भक्त वत्सल है, हालांकि वो किसी विशेष गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कुंती माता बोलती है कि श्री ऐश्वर्य क्या है, श्री ऐश्वर्य श्रुत श्रीवी, श्री ऐश्वर्य श्रुत श्रवि एदमान मदहपुमान नैवा अर्थ विदातु वै त्वाम अकिंचन गोचरा। कोई जो है बहुत सुंदर हो, धनवान हो, उच्च कुल में जन्म हो उसका, और जो है सर्व गुण संपन्न हो, फिर भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरा, अकिंचन गोचर है त्वम, आप किसके गोचर होते हैं, आप किसके जो है मतलब सामने प्रकट होते हैं, कृपा देते हैं, दर्शन देते हैं, अकिंचन गोचर है जिसका कोई नहीं है, उसके जो है आप होते हैं। इसलिए इस बात को लेकर के है? कि भक्त्या तु तोषः, भक्ति से ही केवल आप प्रसन्न होते हैं है? इसमें आप जो है कोई भौतिक क्वालिफिकेशन नहीं देते, भौतिक योग्यताएं आप नहीं देखते हैं। तो उनको याद आया गजराज है, गजराज के अंदर कौन सी क्वालिफिकेशन थी भाई, कौन सा जो है महान वो था परिवार का था। तो केवल या भक्त्यैव गजेंद्राय तुष्टो अभवत, भगवान गजेंद्र से कैसे प्रश्न हुए, तो कोई उन्होंने विशेष स्तुतियां या कुछ संस्कृत के श्लोक या कुछ दूसरे उससे नहीं, नहीं केवल गजराज से प्रश्न हुए, उसने भक्ति भाव से जब भगवान को देखा और देख करके उन्होंने जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यो में भक्त्या है जो भक्ति से जो है अर्पण करता है, भगवान बोलते हैं प्रयच्छति तदहम भक्ति अपरहत असनामी, असनामी है जो भक्ति भावना से जो मुझको देता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। तो है गजराज ने जो फूल अर्पण किया भगवान के चरणों में, ठाकुर जी उसी से प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार जो है इस बात को लेकर के उनके अंदर थोड़ी सी ढांढस बंधा है, हो सकता है प्रभु ये गुण देखें तो हो सकता है प्रसन्न हो सकते हैं। तो फिर जो है प्रार्थना कर रहा है, तो कन्वर्सेशन है भगवान में और प्रहलाद के बीच में, थोड़ा सा 5 मिनट का इसमें जो है बोल रहे हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु अब आप अपने क्रोध को क्या करो, त्याग कर दो प्रभु। क्यों? क्योंकि आपने क्रोध किया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, अब हिरण्यकश्यप क्या हो चुका है, मर चुका है। अब प्रभु जो है उसका आप क्या करो, आप उसको जो है मर चुका है अब उसको छोड़ दो, अब आप प्रसन्न हो जाइए। तो भगवान मां ने कहे है, क्या नाम है कि दूसरों की मृत्यु से है, क्योंकि प्रहलाद ने कहा था प्रभु आप प्रसन्न होंगे तो फिर सज्जन पुरुष भी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, और दुष्ट के मरने से वो भी प्रसन्न हो ही जाते हैं प्राय। तो मानो भगवान कहे कि भाई सज्जन लोग तो जो है ये किसी के सुख दुख से वो तो परे होते हैं, उनको कुछ लेना देना क्या इस सारी चीज से। आप कहे कि सज्जन प्रसन्न हो जाते हैं, हिरण्यकश्यप मर गया, हिरण्यकश्यप मर गया तो वो लोग भी अब प्रसन्न है। तो भगवान मानो कहे कि भाई वो तो ये सारी चीज से परे है। तो प्रहलाद महाराज बोलते कि हाँ प्रभु परे तो हैं, लेकिन वृश्चिक सर्प हत्या साधु अपि मोदते, साधु अपि मोदते, साधु पुरुष भी यदि सर्प के बिच्छुओं की कोई हत्या कर देता है उससे जो है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसका कल्याण हत्या से ही है। एक बार जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का उदाहरण देते हैं, एक बार आश्रम में कोई सर्प आ गया था तो तुरंत जो है उनके शिष्य दौड़ के गए, गुरुजी सर्प आ गया है, तो उन्होंने तुरंत कहा उसको मार दो, और उन्होंने तुरंत उसका वध कर दिया, क्योंकि यदि नहीं मारते हैं तो किसी दूसरे को कष्ट देगा, इसके मरने से कम इसकी ए समस्या तो कम से कम सर्प योनि तो खत्म हो गई ना उसकी। तो इसलिए बोलते हैं प्रहलाद महाराज के ओ साधु पुरुष भी सज्जन लोग भी ऐसे दुष्ट लोगों की हत्या से प्रसन्न होते हैं, साथ साथ में उनका उद्धार भी ऐसे ही होगा, तो इसलिए जो है वो लोग भी प्रसन्न होते हैं। तो फिर मानो भगवान बोले भाई ठीक है मैं प्रसन्न हो जाता हूं, लेकिन कुछ लोग तो मेरे इस क्रोध से ही संतुष्ट है, बहुत से लोग हैं मैं क्रोध में हूं इसलिए उनको वो लग रहा है बड़े प्रसन्न है कि ठाकुर जी देखो, क्योंकि क्रोध में जब भगवान रहते हैं तो दुष्ट लोग तो फिर कहां है? उनके क्रोध से ही भस्म हो जाते, कहां भाग जाते हैं। तो कुछ लोग तो मेरे क्रोध से ही आनंद में हैं, फिर मैं प्रसन्न होकर के करूंगा अभी क्या। तो प्रहलाद बोलते हैं कि लोकस्य निवृत्ति इति प्रत्ययन्ति सर्वे, प्रभु इस समय आपका जो भयानक रूप है ना, इस रूप को निवृत्ति के निवृत्ति से ही सब लोग प्रसन्न होंगे, अर्थात इस रूप का आप समन करेंगे, जैसे कभी कभी हालांकि भगवान का कोई भी रूप भक्तों को कोई प्रभावित नहीं करता, उससे भक्तों को कोई भय नहीं होता, लेकिन कभी कभी जैसे भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, भगवान ने दिखाया जानते हैं मेरे मित्र हैं मेरे सखा हैं, है, मेरे संबंधी हैं, लेकिन जैसे ही विराट रूप को देखा तो उनको भी भय हो गया और तुरंत जो है अर्जुन ने प्रार्थना की, प्रभु अब मैं आपका जो है वो सौम्य रूप देखना चाहता हूँ, दिव्य रूप देखना चाहता हूँ। तो ठीक ऐसे ही यहाँ प्रह्लाद महाराज होते, लोकस्य निवृत्ति थी प्रतियंती सर्वे, इस समय सारा संसार इस रूप को हटाने से या सौम्य रूप में स्थित होने से ही प्रसन्न होगा है? तो इसलिए आप जो है सोचते हैं कि ब्रह्मा आदि, जो ब्रह्मा आदि जो है ये प्रसन्न है इस रूप को देख करके, लेकिन अब वो भी डरे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए। तो फिर भगवान ने कहा मैंने तो यह रूप लोगों के भय को जो है दूर करने हेतु ही धारण किया था, इस रूप से जो है लोगों का भय क्या होगा, खत्म होगा, इसलिए मैंने इस रूप को धारण किया, नहीं तो भला मैं क्यों धारण करता है? तो इसलिए मैं इसको धारण किया हूं, लोग जो है इस समय अब हैं, सबका भय चला गया, इसलिए मैं इस रूप को धारण किया हूं। तो प्रह्लाद बोले हैं एतत रूपम स्मरणत एव भय निवृत्ति न मन्य धारणम, अर्थात एतत रूपम स्मरणत एव, एतत रूपम स्मरणत एव भय निवृत्ति न मन्यु धारणे न, अर्थात इस रूप की निवृत्ति से ही यदि कोई इस रूप की निवृत्ति सॉरी इस रूप का कोई स्मरण भी करेगा, नरसिंह भगवान के उग्र रूप का यदि कोई स्मरण मात्र कर लेगा तो सारे भय उसके खत्म हो जाएंगे, प्रभु अब इस रूप को धारण करने की जरूरत नहीं है। स्मरण मात्र प्रह्लाद मार बोले हैं कि एतत रूपम स्मरणात एव, एव का मतलब होता है निश्चित रूप से, सर्टेनली मतलब इसमें नो डाउट संदेह नहीं है, जो इस रूप को स्मरण मात्र कर लेगा भय निवृत्ति उसके सारे भय खत्म हो जाएंगे। तो अब जो है मानो प्रह्लाद भगवान भगवान उससे प्रह्लाद से कहे हो कि ठीक है आप बोलते हैं इस रूप का स्मरण करने से मतलब सारे भय खत्म हो जाते हैं, तो फिर आप डर क्यों रहे हो, आपको किस बात का भय, भाई आप तो मेरी गोदी में बैठे हैं फिर आपको किस बात का भय है। तो प्रह्लाद बोलते हैं कि प्रभु मुझे आपके इस रूप से भय नहीं है, मैं आपके इस रूप से नहीं डर रहा, ना हम विभज्ये ते अपि अभिमान्य कस्य त्रस्तो अस्मि अहम संसार चक्र कदनात ग्रस्ताम प्रणीतः। प्रह्लाद बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे आपके इस रूप का बिल्कुल भी भय नहीं है, ना हम विभज्ये ते अपि अति भयानकस्य, इस भयानक रूप को देख करके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भय नहीं है, तो फिर किससे भय है? तो बोलते हैं त्रस्तो अस्मि अहम संसार चक्र, मैं उन लोगों से उस भयभीत हूं जो इस संसार में फेंक दिए गए हैं, जो इस संसार में उन जीवों के बीच में फेंक दिए गए हैं, जो जीव एक दूसरे को खा रहा है, एक जीव दूसरे को क्या कर रहा है, खाने में लगा है, ऐसे संसार में फेंक दिए गए हैं, इस बात को देख करके मेरे को बहुत कष्ट हो रहा। देखा जाता है संसार में हर एक दूसरे दूसरे की टांग खींच रहा है, कोई कितना भी सीधे रास्ते पे चलो लेकिन फिर भी लोग अपनी आदतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए प्रह्लाद महाराज उन लोगों की दुर्संसारी जीवात्मा की दुर्दशा को देख करके बोलते हैं कि मेरे को इन लोगों को देख करके कष्ट हो रहा है। तो फिर मानो भगवान ने कहा कि परिहार, इसका तुम परिहार करो। तो प्रह्लाद बोलते कि मैं तो परिहार कर सकता हूं। भगवान बोले कैसे? तो बोल रहे हैं कि विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्व आत्मना मही गृणामि यथा मनीषाम, विगत विक्लवम। तो बोलते हैं कि मैं एक तो जो इस संसार के अशुभ संगति का परित्याग करूंगा, इस संसार के अशुभ संगति का परित्याग करके ईश्वरस्य सर्व आत्मना और भगवान के शरणागत हो करके मये ग्रणामि यथा मनीषाम और मेरे शुद्ध भक्त भगवान के भक्तों के मुखारविंद से भगवान की कीर्ति का गुणगान करके उनकी कीर्ति का जो है क्या करके स्मरण करके उनके द्वारा श्रवण करके कीर्तन करके मैं तो इस संसार सागर से मुझे कोई भय नहीं है, मैं तो आसानी से निकल जाऊंगा। तो भाई फिर मानो भगवान ने कहे ठीक है तुम निकल जाओगे तो वो भी कुछ प्रतिकार करे संसार में जो पड़े हैं, वो क्यों पड़े हैं, वो क्यों नहीं निकलना चाहते हैं। तब जो है आज का श्लोक बोल रहे हैं कि प्रभु है संसारी व्यक्ति जो भी संसार में प्रतिकार के साधन बताए गए हैं वो सारे साधन कैसे हैं, टेम्परेरी है, कोई किसी की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। तो इस श्लोक में जैसे बोल रहे हैं बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, हे नरसिंह देव, जैसे बालस्य न एह शरणम, जैसे एक छोटे बच्चे को अरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, तो तीन बात बता रहे हैं, तीन विशेषण दे रहे हैं कौन कौन से, कैसे संसार की सुरक्षा है, कितना भी प्रयास करके फिर भी सुरक्षा काम नहीं आती है। पहली बात दे रहे हैं बालस्य न एहं शरणम पितरौ, पितरौ जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों की खूब सुरक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे दुखी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर भी बच्चे बीमार पड़ते हैं और अंत में कभी कभी साथ छोड़ करके चले जाते हैं। और न आरतस्य जगत उनबंती, न आरतस्य जगत, न आरतस्य च अगदम, अर्थात जैसे रोगी व्यक्ति होता है, रोगी व्यक्ति को डॉक्टर के पास भी लाया जाता है, डॉक्टर भी उसका इलाज करता है, उसको कॉन्फिडेंस भी है कि मैं इसकी सुरक्षा कर सकता हूं, बचा सकता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी देखा जाता है उसकी दवा कोई काम नहीं करती है, सालों सालों दवा चलती रहती है, रोग में कोई फर्क नहीं आता, या कभी कभी जो है हरि बोल उसका हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, देखा जाता है। एक जो है एक क्या नाम है एक अलेक्जेंडर करके एक, मैंने एक सुना था जब मैं लखनऊ में था लगभग 2005 में, तो उस समय किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ एक डॉक्टर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, बहुत मतलब उस एरिया का नामी वो डॉक्टर था, लेकिन हुआ क्या था, एक बार जो है एक रोगी उनके पास में आया और वो रोगी इतना चिल्ला रहा था पूरा न दिन में न रात में, इतना उसको पेन हो रहा था, क्या हो रहा था कि वो सभी को तंग कर रहा था, और डॉक्टरों ने सारे प्रयास कर लिए लेकिन उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, पूरा माहौल जो है खराब हो गया उस हॉस्पिटल का, सभी लोग बहुत मतलब बोलने लगे कि कुछ इसका करो या इसको जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, परिवार वाले भी उसके जो है दुखी हो गए। जब देखा भाई क्या किया जाए इसका, तो फिर जो है एक परिणाम निकाला उन्होंने सबने मिलकर के, न हो तो कम से कम ये शरीर छोड़ दे तो भी अच्छा है, कम से कम शांति तो है, तो परिवार वालों ने स्वीकृति दे दी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब जो है उन्होंने क्या किया, वो इंजेक्शन लगाया विष का जिसकी जहर से जो है व्यक्ति खत्म हो जाता है, भयानक इंजेक्शन लगा दिया, और इंजेक्शन लगा करके जो क्या नाम है जो डेड बॉडी वगैरह उठाते हैं उनको बोल दिया कि सुबह जो है रात्रि को लगाए, और सुबह कह दिया कि जो है इसको पहले ही उसको उठा लेने का, सूर्य भोर उदय होने से ही ये जो है मर जाएगा, इसको लेकर के जाने, सब तैयार हो गए, सबको बोलवार करके डॉक्टर चला गया, और वो इंजेक्शन लगते ही तुरंत सो गया, और जैसे ही सो गया अब वो सब सोचे कि जो है मर गया है, इसलिए वो तुरंत गए जो है क्या नाम है जिस पर डेड बॉडी लेकर के आते हैं उसको लेकर के गए, और जैसे उसके जो उससे ढका हुआ था चादर से, जैसे उसका वो चादर उठाई, उठ करके बैठ गया और बैठ करके जोर से चिल्लाने लगा, डॉक्टर साहब बचा लिया मुझे, बचा लिया मुझे, और एक इंजेक्शन और वो मेरे को दे दो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं अभी, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। अब जब ये बात जो है उन्होंने तो कह दिया था डॉक्टर ने कि वो मतलब ये तो मर जाएगा, इसलिए आप इसको लेकर के चले जाने का जहां चीड़ फाड़ होती है उसमें जो है, लेकिन वो दौड़ करके गए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, बोला हाँ, जो मरीज था ना जो जिसके लिए आपने बोला था, हाँ वो मर गया ना, बोला मर नहीं गया, पूरा स्वस्थ हो गया है, चिल्ला रहा है हंस रहा है, बोला कि और मेरे को इंजेक्शन लगा दो। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, मैंने वो इंजेक्शन लगाया है जिसकी गंध मात्र से व्यक्ति मर जाता है। बोला डॉक्टर साहब आप जा करके देखो ना, वो तो नृत्य कर रहा है। बोला और एक और इंजेक्शन वो ही लगा दो मेरे को।
था जो है डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, बोला हो नहीं सकता, बोला आप देखो। और जैसे गया तो डॉक्टर के पैर पकड़ लिए, बचा लिया, डॉक्टर साहब आपने इस इंजेक्शन को पहले लगा दिया होता तो इतना कष्ट क्यों होता, और एक और मेरे को लगा दियो। डॉक्टर कुछ बोला नहीं, आया लाइब्रेरी में जितने भी पुस्तकें थी सब डॉक्टरी की, उन्होंने जो है एक क्या नाम है एक जगह रखी और केरोसिन डाला और सब में आग लगा दी। बोला साहब झूठा, भगवान जिसको बचाना चाहता है उसको कोई मार नहीं सकता। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं रोगी नहीं बचा सकते हैं। और तीसरा उदाहरण देते हैं उनवंती मज्जतो नौ, नौका जो है डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए होती है, लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि नौका और व्यक्ति सब डूब जाते हैं, नौका भी गई और व्यक्ति भी सब डूब जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक जो है क्या नाम है जहाज था, क्या नाम था उसका, टाइटेनिक जहाज था, जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा साक्षात काल भी आ जाए तो भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और जब वो जहाज चला वो इतना मजबूत था, उसकी ऊंचाई बता रहे कितनी ऊंचाई थी, 17 मंजिल कोई बिल्डिंग हो इतना ऊंचाई उसकी थी, सोच लो। और उसकी लंबाई कितनी थी, जो फुटबॉल के 3 फील्ड फुटबॉल के जो 3 फील्ड होते हैं, 3 फील्ड जितना उसका वो लंबाई थी, 800 टन एक बार में कोयला उसमें डाला जाता था। 800 टन का मतलब आप सोचो कितना कोयला लगता होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी थी। लेकिन वो जहाज 1912 में इंग्लैंड से जब प्रस्थान किया था मात्र 4 दिन चला, और 4 दिन में ही जो है एक टक्कर से ही, और वो भी बर्फ से जब टकराया तो उसी समय 2 भागों में बट गया, कोई सोच भी नहीं सकता था। और कम से कम उसमें लगभग कितना 1700-1750 लोग उसमें वही डूब करके मर गए, कोई उसको बचा नहीं पाया। तो ये बात यहां पर बता रहे हैं कि जैसे उनवंती मज्जतो नौ, नौका भी जो है हालांकि वो जो है अच्छा समय हो गया ना तो नहीं बचा पाती, तो तप्तस्य तत् प्रिय विधीर्य यहां जेष्ट तावत विभो तन व्रताम त्वत उपेक्षिता नाम। बोलते हैं कि हे प्रभु, इस संसार के तो जितने भी उपाय हैं, बड़े से बड़ा उपाय संसार के अंदर कर लो, कोई भी परमानेंट इलाज नहीं दे सकता, जगत में ना ही कोई परमानेंट है। सैंप साबुन और लगा लो सेंट, जगत में ना ही परमानेंट है। कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाए, इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है। बोलते तन व्रताम त्वद उपेक्षिता, जिसको आपने उपेक्षित कर दिया ब्रह्मांड में उसको कोई भी बचा नहीं सकता है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी जब पुल बन रहा था तो उन्होंने देखा कि अभी वहां भी थोड़ा क्लास चल रहा है तो 5 मिनट हम लेते हैं, तो वो उस समय जो है पुल के ऊपर राम श्री राम लिख करके जो है पहाड़ों पर फेंक दिया जाता था, समुद्र में वो तैर जाते थे। तो भगवान राम ने देखा मेरे नाम में इतनी शक्ति है, अच्छा देखता हूं मेरे अंदर कितनी शक्ति है। उन्होंने एक पत्थर उठाया और जो कोई इतना देख रहा हो सबकी आंख से बचा करके समुद्र में छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा वो सीधा नीचे चला गया, और तो धीरे धीरे जाते हो इतना तेजी से गया कि मानो किसी को खींच लिया उधर से। भगवान ने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन हनुमान जी तो उनको देख रहे थे। हनुमान जी भगवान राम ने कहा हनुमान कुछ देखा तो नहीं, बोला सब देखा है प्रभु मैंने, किसी से कहना नहीं, बोला नहीं कहूंगा नहीं, लेकिन त्वाम उपेक्षिता ना, जिसको प्रभु आप उपेक्षित करते हो भला उसको संसार में कौन तैरा सकता है, कौन उसको शरण दे सकता है, कोई भी इसको शरण नहीं दे सकता है। जिसको भगवान ने शपथ लिया है कि इसको मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, जिसको कृष्ण मानने वाले हैं ब्रह्मांड में कोई बचा नहीं सकता। भगवान ने संकल्प लिया था पांडव कौरवों के लिए, कौरवों का वध होना ही होना है, जबकि कौरव सब अजय हैं, देवता भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा क्या नाम है स्वयं पिता में भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान है, स्वयं जो है द्रोणाचार्य के पास में वरदान है, जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेगा ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता। कृपाचार्य अश्वस्थामा है, दुर्योधन है, दुशासन है, जयद्रथ है, कितने कितने सारे बड़े बड़े जो धनुर्धर थे, लेकिन भगवान ने संकल्प लिया था इनको मारूंगा, और ये हुआ जो है 18 दिन के बाद में पूरी समर भूमि जो है कौरवों से विहीन हो गए। अंत समय में दुर्योधन जब मर रहा था, लास्ट में गदा भीम ने मारी, उसकी जंगा पर तोड़ दी, खून खुना होकर के जो है पड़ गया उस रणभूमि में, तो उसी रात्रि गया था दुशासन, और दुशासन ने जब दुर्योधन की स्थिति को देखा, कहा मित्र मैंने तुम्हारा वो ऐश्वर्य देखा जो आपके एक इशारे से हजारों जो है बड़े बड़े राजा अपना सर नवा देते थे, सर कटाने के लिए तैयार थे, और आज मैं देख रहा हूं इन जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी तुम्हारे पास में कोई नहीं है। तब दुर्योधन ने कहा कि मित्र मुझे इस बात का शोक नहीं है, मुझे शोक इस बात का है कि हम 100 के 100 भाई थे, हम 100 भाइयों में से एक भी बच जाता तो भी मैं संतुष्ट होता, लेकिन मैंने देखा कि 100 भाई मेरे मारे जा चुके हैं और पांडव लोग मात्र 5 थे, है लेकिन 5ों के 5ों जिंदे हैं, यदि उनमें से एक भी मर जाता तो भी कुछ जो है मेरे हृदय को सुकून मिलता। कहने का आशय है भगवान उपेक्षित संसार में शरण दे सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसके ऊपर जो है भगवान शरण देता है, भगवान ने प्रॉमिस किया है, कौन ते है प्रतिजानी न मत्या प्रणश्यति, प्रभुपाद जी ने इसको दिया है, भगवान ने कहा है क्या नाम है, अहम त्वाम सर्व पापी व्यो मोक्ष स्वामी मां सुचह, भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आओ कोई भी ब्रह्मांड में तुम्हारा बाल मां का नहीं कर सकता। शास्त्रों में इसके प्रमाण दिए गए हैं, शास्त्रों में कहा गया है, एक मिनट में मैं समाप्त करता हूं, बोलते हैं मत भक्तानाम युज्यतो अपि विनष्टो नोपपद्यते मद भक्ति बहता पुंसम यह लोके परो अपि न अशुभम विद्यते मत भक्तानाम युगान्ते अपि विनाशो नोपभक्त्यते। बोलते हैं जब युग अंत है, युगान्ते जब युग अंत होता है सब नष्ट होते हैं, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि मेरे भक्त युगांत में भी नष्ट नहीं होते है? बोलते हैं मद भक्ति बहताम पुंसाम मेरे जो भक्त हैं यह लोके परलोके न अशुभम विद्यते, मेरे भक्तों का कोई इस लोक में कोई बिगाड़ नहीं सकता है न कोई दूसरे लोक में बिगाड़ सकता है। और हम देखते हैं कि जिन्होंने भी भगवान की शरण ली है उनका कोई संसार में कुछ बिगाड़ नहीं सका। एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं मीराबाई है, मीराबाई जब बचपन में क्या नाम छोटी सी बच्ची थी, तो एक बार जब किसी की बारात आई थी तो उसमें जो है सब लोग बारात को देखने के लिए छतों पर चढ़ गए, उनकी माता भी चढ़ गई, तो उन्होंने देखा को देख रहे हैं सब स्त्रियां किसको देखती हैं, बारात को नहीं देखते, किसको देखते हैं, दूल्हे राजा को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो वो दूल्हा आ रहा है, देखो उसकी बच्ची का वो दूल्हा है। तो फिर वो जो मीराबाई थी छोटी बच्ची थी, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा दूल्हा कौन है। अब जो है वो क्या बोले, तो उसने कहा कि बेटी तेरा दूल्हा वो कृष्ण है जिसकी तू पूजा करती है। बोला मेरा वो दूल्हा है। बोला हाँ। उस दिन जो है उन्होंने संकल्प कर लिया कि मेरा दूल्हा है, और उनकी सेवा में वो दृढ़ता से लग गई। हालांकि उसको विवाह हुआ, विवाह के समय उसी मूर्ति को ले जा करके जो है वहां पर स्थापित किया चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर की राजा की कन्या थी, चित्तौड़गढ़ में ब्याई गई थी, भोजराज जो है वो थे उनके मतलब उनके साथ में, वहां उसको मतलब रखा गया, ऐसी सेवा करती थी। हालांकि उनके जो इष्ट थे चित्तौड़गढ़ के राजा के वो देवी थी, लेकिन उन्होंने देवी को नहीं माना, इससे वो बहुत रुष्ट हो गए, और उनकी ननद थी उनके ऊपर बहुत ब्लेम लगाए, बोला किसी परपुरुष से बात करती है, मैंने इसको देखा है, क्या क्या उसके ऊपर ब्लेम लगाए। और इसके बाद में एक रात्रि तो जो है वो मीराबाई क्या करती थी, सब सो जाते थे, निकल करके जो है मंदिर में चली जाती थी और बात करती रहती थी, और उन्होंने जब सुना जब बात करते हुए मीराबाई को रात्रि के अर्धरात्रि में, तो जो है जो उनका जो पति था और उनकी बहन थी इतने गुस्सा हो गए, दीवार तोड़ करके वो गेट तोड़ करके अंदर प्रवेश किए, तो देखा कि वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा किससे बात तुम कर रहे हो, बोला इससे बात कर रहे हैं, कौन है तेरा पति, ये मेरा पति है। तो बहुत गुस्सा हुई, उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं, इसलिए उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इसको क्या करो मार दो, इसलिए पहले एक विषधर सर्प भेजा, एक टोकरी में मालाओं को रख करके एक विषधर सर्प भेज दिया मीरा के लिए कि जाओ उनको दे करके आओ। तो कहा जो देने वाली कि इसमें आपके लिए माला लाए हैं, आप भगवान की चढ़ाने के लिए आप माला ले लो, और जैसे ही उन्होंने जो है उसको खोला तो देखा कि वहां विषधर सर्प नहीं है, वहां कौन है, मेरे जिसके सर पर मोर मुकुट से ही मेरी प्रीतम हुई। उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण उसमें सोए हुए हैं, उन्होंने उठा करके छाती से लगा लिया। फिर बाद में उनको विष दिया गया, सब हम अच्छी तरह से जानते हैं, विष दिया गया। मीराबाई ने कहा यह विष है, ठीक है कोई बात नहीं है। उन्होंने भगवान को ऑफर किया और भगवान को ऑफर करके भगवत प्रसाद समझ करके विष को पी गई है। और वो सोच रहे थे कि मीरा अमर है तमर है, इंतजार कर रहे अब ये मरने वाली होगी अब मरने वाली होगी। लेकिन मीरा तो जो है और उसको इतना जोश आ गया, इतना आनंद आ गया, रोमांच कप अश्रु नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। तब सब ने ठोका ये मरने वाली नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान जिसकी रक्षा करने वाला है उसको कोई भी जो है बचा नहीं सकता। शास्त्रों में असंख्य उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अंतिम बोलते हैं कि हो सकता है कि इन साधनों को करने में कोई मतलब कोई कष्ट भी एहसास हो रहा हो, कोई कष्ट भी मिल रहा हो, लेकिन इन साधनों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा होगा इन भौतिक साधनों पर यदि हम डिपेंड करेंगे तो इससे ज्यादा जो है खतरनाक इस संसार में और कोई दूसरी चीज नहीं है। बेटर है इन साधनों को जो है कष्टों को स्वीकार कर लो, आगे चल करके आपके जीवन को ये चमत्कृत कर देंगे। तो इसलिए हमें जो है अन्य साधनों से कुछ मिल सकता है, लेकिन भगवान के नाम पर भरोसा रखो, भगवान में भरोसा रखो, भगवान के सत्संग में भरोसा रखो। ऐसा आप करोगे संसार में कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस जीवन में सुखी रहोगे और दूसरे जीवन में जो है भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए सिद्धांत जान लो, सब सिद्धांत क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए इस कृष्ण भावनामृत का जोर शोर से प्रचार प्रसार करना चाहिए। सबको चाहिए जो है कोई भी थोड़ा भी कुछ समझता है सुनता है उसी को जाकर के दूसरों को बताओ। जितना इसका कृष्ण भावना व्रत का प्रचार होगा ये जान लेना चाहिए उतनी हमारी समस्या का समाधान होगा, उतने ही हम सुखी रहेंगे। बाकी भौतिक प्रयासों से कोई भी सुखी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। चल प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हम थोड़ा ज्यादा टाइम ले। हरे कृष्ण।